श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 लोक संख्या 22 दिनांक 31 जुलाई 2015 स्पीकर इज ग्रेस आदियोग प्रभु।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो नास्तिकतावादी जो सिद्धांत है तो ये बात को बता रहे हैं। ये बड़े अजब बात है। भगवान वो आकर के यदि नास्तिक सिद्धांत को फैलाए फिर बद्ध जीव का उद्धार की कोई संभावना नहीं रहती है। जय श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रसंग के द्वारा दिखा जा रही है कि जो गोवर्धन लीला, ये गोवर्धन लीला के द्वारा ये बात बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो पहले कुछ श्लोकों में कर्मयोगों का बात बताएं और उसके बाद ये आज के श्लोकों में बता रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण ये तीनों गुणों के द्वारा किस प्रकार का ये भौतिक संसार सृष्टि होती है और गुणों के वशवर्ती होकर यहाँ पर बद्ध जीव अपने का नाश कर देता है, खुद का नाश कर देता है और जन्म मृत्यु चक्र जो है उसमें बार बार उसी में आना होता है। जब व्यक्ति जीव रजोगुण और तमोगुण में होता है और विशेष करके जीव के भीतर जब भोग करने की प्रवृत्ति होती है, भोग वासनाएं होते हैं, तो फिर वो भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये बात को कह रहे हैं कि गोवर्धन जब लीला करने के लिए भगवान सोचे तो इंद्र ने ब्रज को नाश करने के लिए भी सोच लिया। जब इंद्र भगवान ब्रज को नाश करने के लिए सोच रहे थे तब भगवान गोवर्धन जी को अपने हस्तकमल में धारण करके अपने भक्तों के साथ एक उत्सव मनाए। देखा जाए तो इंद्र का जो कोप है, क्रोध है, वो ब्रज का कुछ हानि नहीं पहुंच पाया। इंद्र का जो क्रोध है किस प्रकार का गिर रही थी, पानी के रूप में। इंद्र कभी कभी प्रसन्न होकर के सारा संसार वासियों के कल्याण के लिए पानी गिराते हैं, लेकिन ब्रज के ऊपर जो पानी गिरा रहे थे वो उनका क्रोध का एक रूप थी। वो ऐसा प्रसन्न होकर के ब्रजवासियों के ऊपर वर्षा प्रदान नहीं कर रहे थे, वो उनका एक क्रोध थी। मेरा ये क्रोध के द्वारा सारे ब्रज को नाश कर दूंगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, गर्ग संहिता में बताया गया, जब क्रोध इंद्र ने इस प्रकार का क्रोध कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण क्या किए, ना सुदर्शन को अपॉइंटमेंट दे दिए गोवर्धन के ऊपर कि जाओ तुम यहाँ पर जाओ, ये जो इंद्र का जो क्रोध है आपके तेज के द्वारा उनको जला दो, भस्म कर दो। क्रोध एक अग्नि है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो अपना का भी नाश कर देता है और दूसरे को तो छोड़ो, दूसरे के बाद में नाश करता है लेकिन पहले अपना को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर दिखा जा रहा है कि इंद्र ने जब क्रोध किया पहला अमंगल खुद का हुआ और भगवान को नहीं पहचान पाना ये सबसे बड़ी अशुभ बात है। अमंगल है कि देवता है और देवताओं में प्रमुख है, वो जो भगवान को नहीं पहचानेगा, धाम को नहीं पहचानेगा, भक्तों को नहीं पहचानेगा, तो यही बात हुआ। तो वो क्रोध में जब हुआ तो ब्रजवासी भक्तों को नहीं जान पाया, धाम को, ब्रज धाम को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, इसीलिए वो अपराध कर बैठा, गलती किया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब वो भगवान ने ना इंद्र ने जब इस प्रकार का क्रोध कर रहे थे, भगवान ने गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन को आदेश दिए जाओ, जब इंद्र ने क्रोधित होकर के पानी गिराएंगे तो ये पानी का आप पी जाओ, वो पानी को आप सुखा दो, ब्रज में गिरने ही मत दो। तो यही हुआ, जब सुदर्शन जाकर के गोवर्धन के ऊपर बैठ गए और जब इंद्र ने इतने प्रलय समय में जिस प्रकार का पानी गिरती है इतने इसी प्रकार का पानी गिरा रहे थे इंद्र, लेकिन एक बूंद ब्रज के मिट्टी को छू नहीं पा रहा था। जितने पानी गिर रही थी सारे सुदर्शन अपने तेज के द्वारा उनको पी जा रहे थे। और ये नीचे अनंत देव पूरा गोवर्धन के चारों तरफ अपने शरीर को फैला करके बांध बांध दिए थे, यदि भी पानी भी गिरे लेकिन ये अनंत देव के प्रभाव से ये पानी ब्रजवासियों को कोई प्रकार की कष्ट नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार भगवान अपने और एक रूप के द्वारा ऊपर और नीचे गोवर्धन को धारण करके भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजवासियों को वहां पर आश्रय दिए थे, अपने आश्रितों को थोड़ा सा भी खोरच न पहुंचे, थोड़ा सा भी कष्ट न हो, उसी पर ऊपर नीचे सब तरह चारों तरफ भगवान ने अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। जब कोई व्यक्ति जिस मुहूर्त भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान का जो सुदर्शन है वो भक्तों को रक्षा करने के लिए लग जाते हैं। तो ये भगवान का एक अहेतु की कृपा है तो अपने भक्तों के ऊपर। लेकिन इंद्र यहाँ पर गुणों के वशवर्ती होकर, खाली ये भौतिक संसार की बात नहीं, ऐसे कि देवता लोग भी ये भूत प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मिका ये भौतिक जगत जो है ये तीनों गुणों के द्वारा बनाया गया है। और ये भौतिक जगत का जो कहाँ पर है, कहाँ तक है, ब्रह्मलोक तक भौतिक जगत माना जाता है। वहां तक भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं भगवान के विषय में, मतलब द्वंद्व में गिर सकते हैं, ये भगवान है, ब्रह्मा जी कहाँ रहते, ब्रह्मलोक में, इतने सबसे बड़ी भौतिक जगत के सबसे बड़ी ऊंचे प्लैनेट है, मतलब सबसे बड़ी ऊंचे लोक है, वहां के लोग भी भगवान के विषय को नहीं समझ पाते। मतलब जहां तक भौतिकता है वहां पर भगवान के विषय में असमझ रहती है। जब हमें ब्रह्मलोक को पार करेंगे तब जाके हमें भगवान के विषय में सही ज्ञान हो जाएगा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ये भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान के विषय में पूरा ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर इंद्र भूत प्रकृति के जो तीन गुण है ये तीन गुणों के वशवर्ती होने के अंतर्गत होने के कारण वो भगवान को नहीं समझ पाया। और भगवान भगवद गीता में भी ये बात को बताते हैं, त्रिभी गुणमयी भावे एवं सर्वंग इदं जगत, भगवान स्वयं कह रहे हैं ये जो भौतिक जगत में बनाया ये उनका आधार क्या है, ये यहाँ के लोग क्रोधित हो जाना, भोग करने के उनके भीतर लक्षण दिखी जाती है, और कभी कभी खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुश लंबे समय तक टिकती नहीं है। लेकिन भक्ति की जो सुख है वो स्थाई है, चिरस्थाई है। लेकिन सत्वगुण में थोड़ा थोड़ा जीव की भीतर खुशी दिखाई पड़ता है, लेकिन वो खुशी भी एक प्रकार का उनका बंधन के कारण है। उनका जो सत्वगुण में जो एक जीव आता है तो उनके भीतर कुछ आनंद दिखाई पड़ता है, लेकिन ये आनंद भी एक प्रकार की बंधन है। ये जगत की बनावट ऐसा है, ये जगत जो बनाने का मूल कारण है जीव को यहाँ पर बांध के रखे। जब बांध के जीव को रखा जाएगा तब जाके वो प्रयास करेगा कैसे ये बंधन से छूटूं। इसीलिए भगवान ये भौतिक जगत जो भी जीव आया, भौतिक जगत में जो भी जीव आया वहां पर सबको बंधन दशा की कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसे कि ब्रह्मा को भी ऐसा, तो हम तो बद्ध जीव है, हम तो साधारण है, लेकिन ब्रह्मा तक ऐसे लोगों को भी बंधन की दशा लगती है। तो भगवान कहते हैं त्रिभी गुणमयी भावे एवं सर्वंग इदं जगत मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यं परम अव्ययम्। हे अर्जुन, ये भौतिक जगत में जब जीव तीनों गुणों के द्वारा आ जाता है, तीनों गुणों में हो जाता है, मेरे जो परम सत्ता है, मेरा जो दिव्य स्थिति है, वो दिव्य स्थिति को समझ नहीं पाता है, मोहित हो जाता है। यहाँ पर हर कोई मोहित है गुणों के द्वारा। रजोगुण में कोई मोहित है तो तमोगुण के द्वारा कि सत्वगुण के द्वारा। सत्वगुण में क्या है ना, अहंकार आती है। यदि वो सत्वगुण में जो व्यक्ति पहुंचता है उनके भीतर ज्ञान का एक आलोक एक प्रकार का साफ साफ दिखाई पड़ता है, जानता है कि मेरा जीवन की आगे बढ़ना लक्ष्य क्या है, भगवान क्या है, शास्त्र के ये सब समझ पाता है, लेकिन उसने होने पर भी उनके भीतर घमंड आता है, अहंकार आता है। ये अहंकार पतन का एक दूसरा रूप है। जब जीव के भीतर घमंड अहंकार आता है तो ये उसको गिरा देता है। और रजोगुण तमोगुण तो सहज गिरे हुए रहते ही है। जब सत्वगुण की अवस्था इस प्रकार का है तो रजोगुण तमोगुण तो और बुरी अवस्था है। तमोगुण तो पूछो ही मत, और ये भौतिक जगत क्या है? प्राय लोग तमोगुण में, रजोगुण में तो है ही, लेकिन प्राय कलयुग में वर्तमान स्थिति में प्राय लोग तमोगुण में, तमोगुण मतलब वन काइंड ऑफ एनिमल लाइफ, एक प्रकार के पशु जैसे जीवन बिताना, ये तमोगुण का एक पहचान है। तमोगुण मतलब जीव को अज्ञान में ढकल देना, उनको हमेशा मतलब पशु जैसे जीवन बिताना, ये तमोगुण का पहचान है। और रजोगुण का क्या है? रजोगुण में हमेशा ये होता है कि भोग करने की, भोगना है। और रजोगुण में कभी कभी जीव आनंद का अनुभव करता है, कभी दुख कभी सुख। रजोगुण में जो व्यक्ति स्थित होता है कुछ समय भोग करता है, और भोग करते 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 परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब भोग से एक प्रकार का चिड़चिड़ापन उनके भीतर आता है, तो ये सब त्यागना, अभी उसको त्यागना है। इसी प्रकार कुछ समय भोग, कुछ समय त्याग, कुछ समय भोग, कुछ समय त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग। इसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति का जीवन चलती है। और तमोगुण तो एकदम क्या, उनका तो कहना नहीं है, उनको तो ऐसे पड़ा रहता है, अज्ञान में पड़ा, अंधेरा में है। भले वो मनुष्य है, मनुष्य बनकर के जब मांस शराब और उनका इंद्रिय संयम में नहीं रहता है, तो समझ लेना, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो क्या कौन सा चैप्टर, 12 चैप्टर, 12 अध्याय में ये सब अलग अलग गुण जब जीव के भीतर दिखा जाती है, और उनके भीतर जो लक्षण है, लक्षण देख करके आप पता कर लोगे ये व्यक्ति रजोगुण में या तमोगुण में या सत्वगुण में। हाँ, वहां पर वो लक्षण बताया गया, भगवान ने बताए। तो मैं क्या बताया, तो इसी प्रकार इंद्र या ये भौतिक संसार में जो भी कोई आता है, ये तीनों गुणों में मोहित होकर वो भगवान को नहीं पहचान पाता। भगवान स्वयं कह रहे हैं मोहितंग, ये मोहित हो जाता, मोहितंग न अभी जान आती, मुझे जान नहीं पाता, मैं जो ये जगत की सर्वोच्च व्यक्ति हूं वो बात को नहीं जान पाता। फिर ये तीन त्रिगुणात्मिका माया परिधि से ये जो ये संसार के जो भौतिक जगत की जो माया, ये सत्तर जो तीन त्रिगुणात्मिका माया, उसका चुंगुल से बाहर निकलना, ये तीनों गुणों की माया से बाहर कैसे निकलना, तो भगवान ये भी बताते हैं। हाँ, भगवान जदियो कहते हैं ये माया, मेरी जो माया है ये किसका है ना, भगवान का। भगवान का माया अत्यंत शक्तिशाली है, उसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता। भगवान कह रहे हैं दैवीय ऐसा गुणमयी, ये जो गुणमयी माया, दैवीय ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, उनको लांगना मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन आसान कोई व्यक्ति के लिए, आसान तब होती है, आसान वहां पर होती है ना, माम एवजे प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मेरे शरण में आ गया, मेरा आश्रय ले लिया, उनके लिए उतना ही हो जाता, माया उनको उनके पास नहीं जाती है। माम एवजे प्रपद्यन्ते, भगवान एक कंडीशन रखते हैं, मेरा माया शक्ति को पार करना है तो माम एवजे प्रपद्यन्ते, माया मेताम तरंती थे, अपने प्रयास के द्वारा माया को लांघना बहुत लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी योगी लोग भी ये माया के पाल में आ जाते हैं। ऐसा ज्ञानी योगियों की तो छोड़ो, बड़े बड़े भक्त लोग भी, नारद जी जैसे, ब्रह्मा अर्जुन पांडव लोग जैसे, बड़े बड़े भक्त लोग भी ये भौतिक संसार में जब आते हैं, यदि वो भगवान के साथ आते हैं, यदि वो भगवान के पार्षद हैं, यदि वो भगवान के लीला में सहायक देने के लिए आते हैं, फिर भी वो यहाँ पर आ जाते हैं, भूल जाते हैं, ये है, ये जगह का ये है, ये बात ये है यहाँ पर, जैसे वहां से वहां आ जाते हैं भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा जो दासत्व जो स्थिति है उस स्थिति को हमें खो देते हैं, भूल जाते हैं। और जो भक्त के भीतर दासत्व की भावना प्रबल होती है वो इतना माया के द्वारा आक्रांत नहीं होगा। लेकिन प्रभुत्व की भावना बद्ध जीवों के भीतर प्रधान गुण है, बद्ध जीवों के भीतर प्रभुत्व की जो उनके भीतर जो ये चीज है ये विशेष रूप से दिखती है, लेकिन भक्त लोग आसानी से माया को लांग जाते हैं, इसीलिए क्योंकि भक्तों के भीतर दासत्व की, दास की भावना रहती है, सेवा करने की प्रवृत्ति रहती है, और जहां पर सेवा वहां पर माया नहीं होती है, वहां पर गुण काम नहीं करता। शुरुआत में ये होती है, हमें गुण के अंदर अंतर्गत भगवान का सेवा करते हैं, लेकिन करते करते ये गुण हमारे भीतर, चाहे वो रजोगुण में हो, कोई भक्त के भीतर भी रजोगुण हो, लेकिन रजोगुण को भगवान का सेवा में जब लगाता है तो फिर वो भगवान का सेवा से वो रजोगुण निकल जाती है, चाहे कैसे भी गुण, किसी प्रकार के गुण हो, लेकिन जब वो भगवान का सेवा में वो गुण को ट्रांसफर कर बदल देता है तो फिर वो गुण चमकता है सोने की भांति, मतलब उस उदसत्व में आ जाता है। जैसे हाँ, ये बहुत ही संसार के जो तीनों गुणों को कैसे तुलना किया गया है, सत्व गुण को सोने की जंजीर के साथ और रजोगुण को सिल्वर की जंजीर के साथ और तमोगुण को लोहे की जंजीर के साथ। हाँ, लेकिन सत्व गुण वाले जो सोने की जंजीर में है वो लोग ऐसे कहें, अरे देखो मैं तो सोने की जंजीर में हूं, अरे तुम क्या हो, तुम तो लोहे के जंजीर में हो। सत्व गुण में जो लोग है भले वो सोने की जंजीर में बंधन तो है ना, भले वो सोने की जंजीर में बंधे हो ना क्यों, वो ऐसा घमंड करे। मैं बताया सत्व गुण में घमंड होती है कि ज्ञान होती है, हाँ, लेकिन शुद्ध सत्व में भक्ति होती है। आज जहां पर भक्ति होती है यहाँ ज्ञान अपने प्रकोप को नहीं दिखा पाता है, लेकिन सत्व गुण में इतना भक्ति नहीं होती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा भक्ति का झलक लगती है लेकिन ज्ञान होती है। लेकिन ये सत्व सत्व में स्थित व्यक्ति यदि ऐसा कहे, हाँ तुम तो लोहे की जंजीर में बंधे हुए, मैं देखो हाँ सोने का जंजीर में, लेकिन वो चीज को एक बाहर में रहने वाला व्यक्ति जब देखेगा वो क्या बोलेगा, अरे ये तो बेवकूफ है, अरे बंधा हुआ है, जंजीर का काम क्या है, बंद 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 है ना, भले लोहे सोने को हो ना क्या क्या हो गया, लेकिन वो अपने जगह में रह करके वो अपने ये बुरी दशा को देख नहीं देख पाता। लेकिन वो ही दशा को जब बाहर भक्त देखता है, हाँ उसका ये स्थिति को देखता है, हाँ भक्त क्या गया है, तो नाजुक व्यक्ति है, बड़ ऐसा व्यक्ति है बंधन में, अब बहुत बड़ा मुक्त मानता है दिखाता है। तो ये है जैसे कोई व्यक्ति को जेल में डाल दो, जेल में बंदी अवस्था में है, हाँ अब बंदी अवस्था में हो करके जेल में रह करके यदि कोई बोले मैं तो मुक्त हूं, आ सचमुच जो मुक्त है वो कैसे ये बातों को देखेगा, ये तो पागल है जेल में है बंदी अवस्था में, लेकिन जेल में रह करके बंदी अवस्था में रह करके अपने को मुक्त मानना, आज बात सच में जो मुक्त है तो पागलपन देखेगा ना। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पे माहौल कैसा है, सत्व गुण का माहौल है, आ जाता है ना झपकी, आ जाता है ना, ये झपकी क्या है, ये तमोगुण है, माहौल सत्व गुण का है, माहौल यहाँ के सत्व गुण के, लेकिन नींद जब आ जाता है ना ये तमोगुण है। हाँ, इसीलिए ये जो तीनों गुण की खेल है ये देवलोक स्वर्ग के राजा इंद्र तक भी ये होता है। हाँ, जब ये तीनों गुण में जो जीव होता है, जब सत्व गुण वाले कहाँ जाते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सप्तोस्ता, जो लोग सत्व गुण में होते हैं वो ऊपर लोक में जाते हैं, और जो लोग रजोगुण में होते हैं ये कर्मियों को बीच में होते हैं, और जो लोग तमोगुण में होते हैं ये नरक चले जाते हैं, वो लोग पशु योनि में चले जाते हैं। गुणों के प्रभाव में जीव जब गुणों के प्रभाव में आता है तो उनका अलग अलग गति होती है। सत्व गुण वाले इधर जाते हैं, भगवान बताएं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, और क्या अधो गच्छन्ति तामसा, नरक चले जाते हैं तमोगुणी वाले, रजोगुणी वाले ये भौतिक संसार में भोग करने के लिए रह जाते हैं। और जब तक व्यक्ति ये तीनों गुण में रहेगा वो विचलित होगा। और जब एक जीव सत्व गुण में आता है तो ये सत्व गुण को वृद्धि करने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक बार वो प्रवचन कर रहे थे, शिष्य लोग उनके बैठे थे सामने, तो कलकत्ता में काली माता का पूजा बहुत जोर शोर होती है ना, तो एक काली माता के भक्त थे तो गए काली माता के पास, गए और काली माता के पास जाकर के कहने लगे, माँ मुझे ये चाहिए, कांक्षता कर्मणा सिद्धि जजंते यह देवलोका। हाँ, मतलब ये भक्ति संसार के लोग भगवान का आश्रय को छोड़कर देवताओं के आश्रय को छोड़कर भगवान के आश्रय में क्यों जाते हैं ना, देवता लोगों के आश्रय में जब कोई जाता है तो उनका जो इच्छा है वो जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि देवता लोग जान नहीं पाते हैं जीवन के लक्ष्य क्या, वो खुद ही नहीं जानते, भटक जाते हैं, तो फिर उनको उपासक को कैसे मार्ग प्रदर्शन करेंगे, वो खुद ही कन्फ्यूज है, कुछ जानते नहीं है, तो उनका जो दैवी उपासक है वो अपने साधक को अपने हित के विषय में कैसे ज्ञान प्रदान करेंगे। बस साधक जो चाहता है हाँ वो भला हो बुरा हो हानि करे नुकसान करे जो भी करे वो दे ही देते हैं। वो देखते हैं मेरा प्रेस्टीज बनना चाहिए, मेरा पूजा भौतिक संसार में खूब जोर शोर होना चाहिए, भले शराब पी करके गणपति बाबा मोरिया करें चलेगा लेकिन मेरा चलना चाहिए। हाँ ये देवा देवियों का ये अवस्था है। तो ये काली माता के भक्त थे तो गए काली माता के पास, गए जाकर बोले कि माया मुझे ये चाहिए, तो मैया ने दे दिया। और वो लेने के पहले काली माता से वो एक प्रकार का प्रमित किए थे, मुझे जी ये चीज मिल जाएगा मैं आपके पास एक बकरा भेंट लगाऊंगा। हाँ तो उनका चीज मिल गया। तो मिल जाने के बाद काली माता बोले अरे तुम तो कहे थे कि आपका जो इच्छा है पूरा हो जाने के बाद मेरे पास एक काली ना बकरी बलि चढ़ाओगे, किधर है बकरी? तो वो जो उनके भक्त थे बोले मैं यहाँ क्या बताऊं, बकरी इतने आजकल महंगे हो गए हैं तो मेरे पास पैसे नहीं है आपके पास बकरी खरीद के बलि चढ़ाऊं। तो काली माता बोले अरे ये क्या है, कैसे आ गया मेरे पास, किधर से आ गया? तो बोले ठीक है बकरी नहीं मिले ना, एक सुअर किधर घूमता है तो सुअर ला करके दे दो। तो वो जो भक्त थे बोले सुअर भी आजकल मुझे मिलते नहीं है। तो वो माँ काली माता बोले ठीक है ये भी नहीं मिला ना, कुछ तो मुझे देना चाहिए ना, तो ठीक है आप ये भी नहीं दे पाते, एक काम करो एक मक्खी ला करके मुझे भेंट दे दो। तो भक्त जो था तो वो क्या कहने लगा कि आपके चारों तरफ इतने सारे मच्छियां भिन भिना रहे हैं, क्या है एक झपट नहीं सकते हो? मुझे मांग रहे हो, मुझे बोल रहे हो एक मक्खी भेंट देने के लिए? तो ये स्थिति होती है देवताओं के लाइन में, देवताओं की ये हालत होती है और देवताओं के जो भक्त होते हैं ये भी ऐसा हालत होते हैं। हाँ रावण कुंभकर्ण हिरण्यकशिपु कितने बड़ी तपस्या किए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कितने बड़ी, क्षण चुटके भर के उनका नाश हो गया, क्षण भर में उनका सारा तपस्या पानी में गया, पंडुर हो गया। हिरण्यकशिपु देखो भक्त लोग भी आज इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर पाएंगे। हाँ ऊर्ध्वभाव नवदृष्टि और अपने जो पैर के नाखून के अग्रभाग में जमीन में भार दे करके हाँ अपने दो हाथ को ऊपर उठा करके अपने ऊपर देख करके कितने हजारों साल तक उन्होंने तप किए, हम तो नहीं कर पाएंगे इतना। लेकिन इतने तप करके जब भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा पाता, देवी उपासक दूसरे को तकलीफ देने के लिए वो तपस्या करते हैं, जो लोग तमोगुणी उपासक है वो दूसरे को कष्ट देने के लिए तपस्या करते हैं, जो लोग रजोगुणी है हिरण्यकशिपु रावण तो दूसरे को सताने के लिए भोग करने के लिए वो लोग का तपस्या इस प्रकार का थी। और इस प्रकार का प्रवृत्ति बन करके जब तपस्या की जाती है तो दूसरे के पहले खुद का नाश हो जाता है। तो यहां पर ये क्या मैं बताया, हाँ दैवी उपासक, हाँ दैवी उपासकों का ऐसे की स्थिति होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार ताकीद करते हैं कि किसी को भी भगवान देवा देवियों का भक्त नहीं बनना चाहिए, अवश्य सम्मान करना है, एक भक्त तो के साधारण व्यक्ति को सम्मान करना, फिर देवता लोग तो कितने ऊंचे लोग है, हाँ तो सबको सम्मान करना है लेकिन भक्त नहीं बनना, उनका फॉलोअर्स नहीं बनना है। यदि हमें कुछ बनना है तो भगवान का बनना है। हाँ तो आप ये बात भी देखोगे इंद्र के ये चरित्र इस प्रकार का है, वो बार बार गलती करते रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ये भौतिक जगत को सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, ये दृश्य जगत को बनाने के लिए उनके भीतर ये इच्छा प्रवृत्ति होती है, तो अपने भीतर से रजोगुण अवतार जो ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं, फिर ये सृष्टि को धर रखने के लिए अपने जो सत्वगुण का आधार विष्णु वो अपने से वो प्रकट कराते हैं, और नाश का जो अध्यक्ष संहार का जो वो शिव जी को क्रिएट सृष्टि करते हैं। यदियो ये भूत प्रकृति के सत्व रजतम ये भगवान के अंदर से क्रिएट सृष्टि हुआ उत्पन्न हुआ, लेकिन ये भूत प्रकृति के गुण में उलिप्त नहीं होते हैं, वो हमेशा ये तीनों गुणों को उत्पन्न करने के बाद भी वो अपने दिव्य स्थिति में हमेशा हमेशा रहते हैं, लेकिन हम ये तीनों गुणों के अंदर में आ जाते हैं। हाँ तो ये बात हुआ था जब इंद्र ने ना भगवान श्री कृष्ण जब कहाँ गए थे भौमासुर का वध करने के लिए, भौमासुर का वध करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण गए थे उस समय भौमासुर का वध कर दिए, करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और गए सत्यभामा, ये दोनों गए स्वर्ग, स्वर्ग गए, अमरावती में गए, और अमरावती में जाकर के इंद्र को मिले, और इंद्र की जो माँ है अदिति, हाँ, उनको भी मिले जाकर के। हाँ, तो मिलने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उस समय सत्यभामा देखे ये स्वर्ग में इतने सारे पारिजात वृक्ष है, तो एक पौधा ला करके गरुड़ के पीठ के ऊपर रखे। कि एक बार ऐसा हुआ था, नारद जी आए थे द्वारका और रुक्मिणी की एक पारिजात फूल दिए थे, और वो फूल को देख करके सत्यभामा के मन के भीतर भी ये बात आया था कि मुझे भी ये फूल मिलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनको ये वहां पर कहे थे कि तुमको फूल क्या, एक फूल में भरे हुए एक वृक्ष मिल जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को वध किए और वहां से वो स्वर्ग गए तो ये बात को सत्यभामा ने याद करा दिए कि प्रभु आप मुझे बोले थे ये बात। तो भगवान बोले ठीक है एक पौधा लेके आ जाओ। हाँ, और जब लेकर के आ गए और गरुड़ के ऊपर रख दिए, और देवताओं को ये बात पता चल गया और सारे देवता लोग क्रोध में आ गए, अरे ये कैसे बात हो गया, ये हमारे घर में आए थे और हमारे घर में आकर के हमको बिना बताए हाँ हमारा घर के संपत्ति को लेके जा रहे हैं, क्योंकि पारिजात जो होता है वो स्वर्ग की संपत्ति है, ये भौतिक जगत की नहीं है, यहाँ पर दिखता नहीं है, पारिजात फूल वहां पर स्वर्ग में होता है। तो देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ, अरे ये स्वर्ग मर्त्य लोक के जो लोग है ये स्वर्ग की संपत्ति का अधिकारी बनेंगे। देखिए जो देवताओं के हित करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर है, और ऐसा नहीं है कि भगवान कोई विजिट करने के लिए घूमने के लिए गए थे, कोई कारण बस गए थे, क्योंकि भौमासुर देवताओं की जो माँ थी अदिति उनके जो कान की कुंडल को लेके गया था भौमासुर। हाँ, और ये उनको मारने के बाद भगवान वो कान की कुंडल को रिटर्न वापस देने के लिए देवताओं को इसीलिए वो गए थे। हाँ, लेकिन इंद्र ने इस प्रकार का जो व्यवहार किए, सारे देवता लोग मिल करके आ गए भगवान के साथ फाइट लड़ाई किए, भगवान सारे असुरों को ना देवताओं को मार दिए, और मार करके जब आ रहे थे तो श्रील सुखदेव गोस्वामी वहां पर बताते हैं इंद्र का जो ये व्यवहार है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान व्यक्ति को वो भी पसंद नहीं आया। इंद्र का इस प्रकार का जो व्यवहार है ये किस प्रकार का था, तो स्वार्थ पर मनोवृत्ति, ये बौद्धिक संसार में दिखी जाती है कि जब किसी के भीतर अपने काम निपटाना हो तो हर व्यक्ति को सम्मान करता है, हाँ प्रेम करता है, लेकिन जैसे अपना काम मिट जाती है, हो जाती है, फिर वो लोगों से वो बंधुभाव को त्याग कर देता है। ये कैसा हुआ, ये एक भौतिक व्यवहार है, ये भौतिक व्यवहार ये स्वर्ग में भी है, इंद्र के भीतर भी है, खाली ये भौतिक संसार में लोगों के भीतर ये व्यवहार नहीं है, ये वहां तक लोगों में भी ये भाव दिखाई जाती है। तो इसीलिए हमेशा इंद्र इसी प्रकार भगवान के प्रति गलती करते रहते हैं, और भगवान वहां पर भौमासुर को मारने के बाद भौमासुर के वहां पर कई सारे स्त्रियां बंधन में थे, और सारे स्त्रियों को वहां पर भगवान मुक्त कराते हैं, और सारे को भी विवाह करते हैं, और विवाह करने के बाद हाँ अलग अलग रानियों के लिए 16,100 रानियां थी भगवान के, वो सारे रानियों के लिए अलग अलग महल बनाते हैं, ऐसा है कि वो महल 1 BHK 2 BHK 3 BHK ऐसा नहीं था, भगवान जो हर अलग अलग हर एक रानियों के लिए जो प्रासाद बना के दिए थे तो 1 BHK नहीं था, एक हल बेडरूम की हल किचन ऐसा नहीं था, वो इतने विशाल थी, उनका वैभव उनका ऐश्वर्य इतने भरपूर थी, उनका सौंदर्य इतने ऐसा थी। हाँ, तो इतने ऐश्वर्य होने पर भी तो भगवान क्या कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में जाकर के झूठे पत्ते उठा रहे थे, इतने ऐश्वर्य होने के बावजूद भी भगवान ये भौतिक संसार में जब आते हैं इतने छोटे काम करते हैं, जो कि ये भौतिक संसार में किसी बद्ध जीव के भीतर थोड़ा सा भी ऐश्वर्य आ जाता है उनका घमंड आ जाता है, एक घमंड को चूर चूर कर तोड़ने के लिए भगवान जब ये संसार में प्रकट होते हैं एक छोटी सेवा अपने जीवन में अपनाते हैं, भैया आपके यज्ञ में बहुत सारे अतिथि आएंगे, वो अतिथि जो प्रसाद ले लेंगे वो प्रसाद का झूठन पत्र को पत्ता को उठाना मेरा सेवा है। भगवान ये संसार के सारे संपत्ति के मालिक है, लेकिन ये भौतिक संसार में जब आते हैं अपने को ऐसा पेश करते हैं एक तो ये कंगाल है, और बद्ध जीव उनको समझ नहीं पाता। हाँ ये तो एक हमारे जैसे हैं। जिस प्रकार चंद्र का उत्पत्ति कहां से हुआ, खीर सागर से, खीर सागर, और खीर सागर ये भौतिक संसार में नहीं दिखती है, यहाँ पर नमकीन सागर है, और ये यहाँ के लोगों को खीर सागर का अनुभव नहीं है। हाँ तो यो सोचते ऐसा सोचते हाँ ये खीर सागर भी नमकीन सागर के भांति होगा, क्योंकि उनको नमकीन सागर का अनुभव है। अब अपने अनुभव जहां तक है वो वहां तक उनका बताएगा ना, जो भक्त को जितना अनुभव हुआ है अपने अनुभव को लेकर के वो बताएगा ना। ठीक उसी प्रकार बद्ध जीव का अनुभव भौतिक सीमा के भीतर, भौतिक जगत की ज्ञान भी पूरा पूरा नहीं है। ये भौतिक संसार के बद्ध जीव का स्थिति ऐसे है, भौतिक ज्ञान भी पूरा पूरा उसको नहीं है, फिर आध्यात्मिक ज्ञान तो छोड़ ही दीजिए। तो चंद्र जदियो खीर सागर से उत्पत्ति हुआ है, लेकिन चंद्र सागर ना खीर सागर में रहने वाला मछली चंद्र को क्या कहते हैं, ये तो हमारे जैसे के चमकीला मछली है। खीर सागर में भी मछलियां रहती है, लेकिन ये खीर सागर में भी, खीर सागर से चंद्र जब जन्म लेते हैं तो खीर सागर में रहने वाला मछलियां क्या सोते हैं, ये चंद्र तो ये हमारे जैसे के मछली है। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार में हर जीव ये तीनों गुणों के द्वारा जब मोहित हो जाता है, जब साक्षात भगवान श्याम सुंदर जब ये भौतिक संसार में प्रकट हुए थे कितने लोग उनको पहचाने थे, केवल पांडव लोग जानते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम सुंदर रूप, इतने हर सारे रूपों में से श्याम सुंदर जो स्वरूप है मतलब सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, उस स्वरूप में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे कितने लोग जान पा रहे थे ये भगवान है करके, नहीं पहचान होता नहीं है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहां पर ये बात बताते हैं कि हमें भगवान को ये गुणों के भीतर आकर के नहीं जान पाते हैं, और रजोगुण में जब एक जीव होता है तो वो संसार को सृष्टि करता है। भगवान अपने रजोगुण शक्ति के द्वारा ये भौतिक संसार सृष्टि करते हैं। दक्ष प्रजापति के भीतर रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनको एक बार बकरा का सर लगाना पड़ा। उनको उनके भीतर रजोगुण का प्रवृत्ति इतने थी वो वैष्णव के प्रति अपराध करते थे। रजोगुण में जब बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं सरकारी कर्मचारी या लोग, हाँ अपने पोस्ट की पद में बैठ करके वो भक्तों को भी भक्तों के प्रति भी अपराध कर देते हैं। रजोगुण में दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्ति भी अमरीश महाराज जैसे भक्तों के प्रति अपराध कर बैठे, क्योंकि रजोगुण का प्राधान्य जब होती है वो अपराध की प्रवृत्ति, क्योंकि रजोगुण में ऐश्वर्य आती है, अहंकार मतलब धन सुंदरता अपने ये जो चीजें आती है, तो वो रजोगुण में हो करके वो ऐसे की भक्तों के प्रति भी वो अपराध कर बैठते। हाँ इसीलिए यहाँ पर हाँ ये रजोगुण में भगवान ये सारा सृष्टि को रचना करते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण ये बात को भी बताते हैं, जब गोसु विप्रेशु धर्मेशु च मई, जब गो के प्रति, धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति, साधु के प्रति और मेरे प्रति रजोगुण में होकर कोई व्यक्ति जब अपराध करता है, सौवा आसु विनश्यति, हाँ उनका जल्दी नाश हो जाएगा, नष्ट वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। सौवा आसु, आसु में जल्दी विनश्यति वो नष्ट हो जाएगा। धर्ममयी, धर्म में भी धर्म के प्रति यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है किसी के भीतर, हाँ वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत तो स्वामी महाराज बता रहे थे, समय तो नहीं है, भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बताते थे कि एक बार एक राजा का राजा राजकुमार थे, और उनके साथ उनका मिनिस्टर के लड़का भी था, और उनके साथ और एक उनके राजकर्मचारी का लड़का भी था। ये तीनों गए थे एक बार, तो जाते जाते के दूसरे राज्य में चले गए, और दूसरे राज्य में जाकर के दूसरे राज्य के राजमहल के भीतर घुस गए। जब घुस गए देखे राजा नहीं है महल के भीतर, लेकिन राजमहल के भीतर तीन माताजियां खड़ी थी, माताजियां मतलब अनमेरिड माताजी, तो वो खड़ी थी। तो जब देखे ये तीनों राजकुमार, मंत्री का लड़का और एक कोई उनका और राजमहल के भीतर कोई उनका और एक उनका मित्र है। ये तीनों मित्र जब देखे गए देखे तीन माताजियों को, तो वो तीनों माताजियों को शादी करने के लिए सोच लिया और शादी भी कर लिया। हाँ जब कर लिए, हाँ उस समय राजा नहीं थे वो वहां पे, तो राजा बाहर से आए देखे कि हमारे ये राजमहल की जो कन्याएं हैं ये अनजान पुरुषों के साथ बात कर रहे हैं। हाँ तो वे देखे राजा क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के ये जो राजकुमार थे उनको सोने की जंजीर में बांध दिए और मंत्री का जो लड़का थे उनको सिल्वर चांदी के जंजीर में बांध दिए और जो और एक कर्मचारी के लड़का था उनको लोहे की जंजीर में बांध दिए। हाँ बांध करके जेल में भर दिए। तो भक्ति सिद्धांत तो स्वामी महाराज वहां पर बताते हैं कि जीवों का जो अलग अलग कर्म करने की प्रवृत्ति है, हाँ वो प्रवृत्ति के द्वारा ये बौद्धिक संसार में बंधे जाते हैं। मैं पहले बताया भले वो सोने की जंजीर में क्यों ना बंधे हो, बंधन बद्ध है वो, बद्ध उनको मुक्त तो नहीं कहा जा सकता। भले वो सोने की जंजीर में बंधा हो वो बद्ध है, हाँ वो मुक्त तो नहीं है। बाहर दृष्टि से दिखा जाए जो भी है लेकिन वो बद्ध जीव है। भले जीव सत्व गुण में स्थित हो ना क्यों, उसको भी बद्ध माना जाएगा जब तक वो निर्गुण नहीं हो जाता। और निर्गुण में शुद्ध भक्ति होती है। निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं होना चाहिए। और हमारे भीतर काम क्रोध द्वेष मत्सर ये क्यों होती है ना, हमें जो हमारा जो स्थिति है जड़ और चेतन है, ये भौतिक संसार का जो रूप है जो बनावट है वो दो चीज मिलावट हुआ है, इसलिए हमें दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं, मत्सर आती है, क्रोध करते हैं, झपट पड़ते हैं लोभ और हाँ क्यों ना, ये भौतिक जगत की जो बनावट है जड़ और चेतन, ये जड़ चेतन के सम्मिश्रण होने के कारण हमें क्रोधित होते हैं, मत्सरता आती है, ईर्ष्या होती है, ये सब होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है ये उनका ये एक रूप है, भौतिक जगत है दो रूप है। आध्यात्मिक जगत जो है चेतन है, वहां पर हर वस्तु चेतन है, हाँ वहां पर ये चीज नहीं है। तो ये सब ये आज के प्रसंग के द्वारा बता करके भगवान ये एक चेतावनी देते हैं कि जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे पास पहुंचना चाहता है, तो निर्गुण नित्य सत्वस्थ नियोगो खेम आत्मवान, आत्मा में स्थित हो आत्मवान, ऐसे जिसको आत्मवान बनना चाहिए, नियोगो खेम हाँ आत्मवान, निर्गुण नित्य सत्वस्थ निर्गुण होना चाहिए और नित्य सत्वस्थ नित्य सत्वस्थ में उनको स्थित होना चाहिए, तभी जाके वो मुझे प्राप्त करेगा। तो इस प्रसंग के द्वारा भगवान लेक्चर दे के प्रवचन करके कहना चाहते हैं, हे इंद्र भले तुम देवता हो, देवताओं में प्रतिनिधि हो, देवताओं में प्रमुख हो, फिर भी आपका स्थिति क्या है, ये इसी में आप घूम रहे हो, हाँ ये तीनों गुणों के भीतर घूम रहे हो, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पाते। भले आप बहुत बड़े हो लेकिन मुझे पहचान नहीं पाते। और आज भी बहुत बड़ी आचार्य हमारे जो सड़ गोस्वामी है, ब्रज परिकर है, राधा रानी के प्रिय जन है, हाँ जिनका चरण कमल की आराधना से भव बंधन टूट जाती है, हाँ उनके उनमें से आज जो सनातन गोस्वामी पाद जी उनका तिरुभाव तिथि है। और सनातन गोस्वामी पाद जी कह नहीं सकते हैं, बहुत बड़े आप लोग पढ़ देख लेना। और आज भी व्यास पूर्णिमा श्रील व्यास देव जी का प्राकट्य तिथि है। कितना बार समझाए थे धृतराष्ट्र और उनके लड़कों को पुत्रों को, हाँ महाभारत होने के पहले व्यास देव जी कितना बार समझाए थे, हाँ अंत समय में कुंती जब इतने अपने सारे पुत्रों को खो करके कुंती नहीं गांधारी सारे पुत्रों को खो करके कुरुकुल का विनाश का इतना जो धक्का लगा था धृतराष्ट्र के भीतर, और अपने पुत्र को खोने के बाद गांधारी इतने दुखी हो गए थे, उस समय वो व्यास देवी जी को प्रार्थना किए थे, कृपया मेरे आखिर बार मेरे ये पुत्रों को दिखा दो, दर्शन करा दो। तो व्यास देवी जी अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा कुंती महारानी और सारे पांडव लोग भी वहां पे भी उपस्थित थे, गांधारी जी को व्यासदेव जी अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वो सारे कौरवों को और जितने सारे योद्धा थे वो सारे को दर्शन करा पाए थे। और व्यासदेव जी है वो लिटरेचर एक्सपेंशन है, भगवान के जो क्या साहित्य का अवतार है, व्यादेव जो है वो साहित्य का अवतार है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे ये भागवत जो है मेरा स्वरूप है। धर्म ज्ञान आदि भी स कृष्ण स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञान आदि भी स भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम प्रत्यावर्तन कर गए तो व्यासदेव जी उस समय अपने हाथ में श्रीमद भागवत महापुराण को सारा संसार वासियों को दिखाए, डरो नहीं, भले कलियुग है बहुत ही संसार में, लेकिन भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, इसका आराधना करो, निश्चित रूप में सद्गति प्राप्त करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण श्रील व्यासदेव जी के माध्यम से सुखमुख अमृत की धारा बहते हुए तो भगवत धाम ले जाने के लिए कलिहत बद्ध जीवों के पास ये महापुराण के रूप में प्रकट हुए। यदि कोई व्यक्ति श्रील व्यासदेव जी के ये लिखी हुई रचना और श्रील सिखदेव गोस्वामी को उचिष्ट का पान करे, अमृत को पान करे, तो निश्चित रूप से वो भगवान का भजन का अधिकारी बनेगा और भगवान का चरण कमल को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।